तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। नहीं, ये कहानी, और पिछली कहानियों में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कहानी जो है मुझे रिक्वेस्ट की गई थी मेरी फ्रेंड की ओर से कि बताइए आप इसके बारे में, जो इसलिए मैं आपके सामने ये कहानी लेकर के आया हूँ, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। ये कहानी जो है हॉरर, थ्रिलर, पैरानॉर्मल, आप चाहे जिसे जो भी नाम दो। दरअसल भूत प्रेत की कहानी तो हम काफ़ी सुनते हैं आम दिन, आए दिन किसी के मुंह से या कहीं से भी, लेकिन आज की जो कहानी है ये आसमान में रहने वाले वाकई एक भूत की है। और इस कहानी बकायदा इसका रिकॉर्ड है, मतलब दस्तावेज है, प्रूफ है इसके, इस कहानी के, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि भूत प्रेत की कोई कहानी सुनते हैं, कोई हमें सुनाता है या बताता है, तो हम यकीन नहीं करते, हम बस कहानी के रूप में सुन लेते हैं और सोचते रहते हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो हाउ कैन वी बिलीव इन दैट। सो इसमें भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन आज की जो कहानी है इसमें ऐसा बिल्कुल आपको कोई दोहराई नहीं होगी, बिकॉज ये रिकॉर्ड पर है। और जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट और ये सब है वो इसे काफ़ी सीरियसली ले चुके हैं। अभी वो ज़माना है जब इसे, इसके ऊपर स्टडीज़ होती है बाकायदा। आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का, जिसके थ्रू आप पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन सकते हैं और सामने आपकी जो भी रिसर्च है इससे रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। आजकल के दौर पर मशीन्स भी काफ़ी ऐसे आ चुकी हैं, ईजाद हो चुके हैं, इवोल्यूशन हो चुका है मशीनों का भी, जो रिकॉर्ड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। रेफरेंस के लिए आप कभी देखते ही होंगे डिस्कवरी या हिस्ट्री चैनल में, तो वो कोई और बात है। सो, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बकायदा यहाँ इंडिया में ये सब नॉर्मल नहीं है। कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये सारा कोर्स वगैरह नहीं दिखेगा, और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे ये जॉनर पसंद है या मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे सामने, जो जो दुनिया के साथ चले। सो बहरहाल लौट आते इस कहानी पर। सो ये जो कहानी है, आज से ठीक 51-52 साल पहले इस कहानी की शुरुआत हुई थी, दिसंबर 1972 से इस कहानी की शुरुआत। ईस्टर्न और 1972 मतलब इंडिया और पाकिस्तान के जो वॉर है 1971 का, उसे एक साल हो चुका था। इस दरमियान मतलब 93,000 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर किए थे, ये भी एक रिकॉर्ड है इंडिया के नाम की। पहला ऐसा किसी देश जिसके सामने ऑफिशियल 93 सोल्जर्स किसी और देश के सरेंडर किए हुए, तो गौरवान्वित करने वाली ये बात। और चले चलते हैं दिसंबर 1972 से ये कहानी, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क का ये काफ़ी फेमस एयरपोर्ट। ईस्टर्न एयरलाइंस का एक फ्लाइट, ट्राई सीटर 318, ईस्टर्न एयरलाइंस की ये फ्लाइट थी 318, और 180 मुसाफिर और क्रू मेंबर के साथ ये उड़ान भरता है जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए। फ्लोरिडा में इसे पहुंचना था। और टेक ऑफ करता है प्लेन, सारी चीज़ें नॉर्मल। कैप्टन है वो, प्लेन के जो कप्तान है वो चेक करते हैं सारी स्टेबिलिटी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह, सब नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। टेक ऑफ के बाद वेदर वगैरह और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी सिग्नल मिल चुका था कि हाँ अभी आप उड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं। सर्विलांस में जब था प्लेन तब भी कोई ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं था। तो टेक ऑफ करने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती, प्लेन स्टेबल मोड पे चला जाता है एक समय बाद। आपने देखा होगा कि एक जो सीट बेल्ट का जो एक बटन होता है वो साइन जो है वो ऑफ हो जाता है स्टेबल होने के बाद, लेकिन बावजूद इसके क्रू मेंबर जो है वो कहते हैं कि आप सीट बेल्ट बांधे रखें कन्वीनियंट के लिए, लेकिन अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मुसाफिर उसे खोलते बंद करते, आपको भी पता होगा। तो ये जो फ्लाइट है, इसके जो क्रू मेंबर हैं एयर होस्टेस, जब फ्लाइट स्टेबल होता है तो वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती हैं सारी चीज़ें, जो मदद करती हैं किसी को अगर मदद चाहिए हो, पैसेंजर्स में से सबको कंफर्टेबल करती हैं, और इन्हीं फ्लाइट अटेंडेंट में से एक एयर होस्टेस जिनका नाम फे मेरी वेदर, उनका नाम काफ़ी प्रतिभाशाली फ्लाइट अटेंडेंट, रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इतने सालों में। कैप्टन भी बाकायदा सेफ अनाउंसमेंट करते हैं कि आप सब जो है वो ठीक, आई मीन कंफर्टेबल रहें, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा वेदर है, घबराने वाली कोई बात नहीं। क्रू मेंबर अपने अपने काम कर रहे होते हैं, पैसेंजर अपने बिजी होते हैं अपने अपने कामों को लेकर, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई न्यूज़पेपर, कोई और कुछ बातें कर रहे हैं। उसके बाद जो फ्लाइट अटेंडेंट है फे मेरी वेदर, ये अपने सीट से उठती है और प्लेन के पिछले साइड में जाती है, पिछले हिस्से में। अब जो प्लेन का जो पिछला जो हिस्सा है, आपको पता ही होगा, वहाँ पर अमूमन टॉयलेट होता है, उसी के सामने जो वो कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो फूड ड्रिंक और ये सब खाने पीने की चीज़ें होती हैं। और दरअसल प्लेन में जो है वो गरम-गरम ही खाना सर्व होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि उनकी पैकेज ही वैसी होती है कि अमूमन वो गर्म ही सर्व करते हैं, और अंदर जो है वो ओवन वगैरह की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ चीज़ अप्रोप्रिएट, सब ठीक। तो जो फ्लाइट अटेंडेंट है फे मेरी वेदर, ये बढ़ती हैं पिछले हिस्से में, जो आइल है जो पैसेंजर के बीच में से, वहाँ से वो गुजरती हैं, सारे जो फ्लाइट जो मेंबर हैं उनको देखते हुए, सब कंफर्टेबल हैं कि नहीं, एक बार वो नज़र घुमाती हैं सब में। उसके बाद वो चले पड़ती हैं पिछले हिस्से में वो जाती हैं और ट्रॉली उठाती हैं खाने की, और उसके बाद में सबको ब्रेकफास्ट लंच अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो सर्व करने के लिए वो जाती हैं, फूड के पैकेजेस जो भी है खाना गर्म करने के लिए। तो ये जो अटेंडेंट है फ्लाइट मेरी वेदर, तो सॉरी ये जो फे मेरी वेदर है, ये जो बढ़ती हैं उस फ्लाइट में पिछले हिस्से में फ्लाइट के, तो वहाँ सर जब वो अवन की तरफ बढ़ती है, एक सेक्शन होता है वहाँ पर टॉयलेट के पास में, अगर आप प्लेन में अमूमन उड़ती हैं, आई मीन उसका इस्तेमाल करते होंगे प्लेन का, तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ बुक्स वगैरह में, तो जो जितने भी मैंने सीरीज़ मूवीज़ और ये सब सारी चीज़ों में देखा है, पता चला है मुझे, तो अमूमन वो वहीं रहता है सेक्शन, तो अवन भी वहीं रहता है और वहीं था उस टाइम पे भी, ईस्टर्न एयरलाइन का वो जहाज़ और जो फे मेरी वेदर है वो जाती हैं और अचानक घबरा जाती हैं। अब वो घबरा इसलिए जाती हैं क्योंकि जब वो अवन की तरफ बढ़ रही होती हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ है, शायद अवन में कुछ है। जाहिर सी बात है कि अभी खाना वो लेकर ही आ रही हैं, परोस ही रही हैं, तो वो खुद ही खाना डालेगी और उसे गर्म करेगी, लेकिन अवन का जो शीशा है वो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, वो थोड़ा और करीब जाती है। तो एक जो शीशा है वो अवन का, उसमें एक जो धुंधली तस्वीर साफ होने लगती है। जब वो और करीब पहुंचती हैं तब वो इतना ज़्यादा घबरा जाती हैं कि अपनी जगह से 2-3 कदम पीछे हो जाती हैं, क्योंकि वो जो अवन का जो ग्लास होता है वहाँ पर वो देखती हैं कि किसी का चेहरा, किसी का साया। अब फे मेरी वेदर जो है वो काफ़ी डर जाती है वो एयर होस्टेस, और उनको लगता है कि वो आंखें बंद कर लेती है, और उनको लगता है कि शायद मे बी वो थक गई होगी इसलिए कुछ ऐसा उनको दिखाई आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके दोबारा जाती हैं, दोबारा उसी और वही अवन, फिर से वही चीज़, उन्हें लगता है कि कोई है, कुछ है वहाँ पर अवन के शीशे में, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से जाती हैं, थोड़ा और नज़दीक जाती हैं, और जब वो एकदम करीब जाती तब वो चीख उठती हैं, उनकी चीखें निकल आती हैं। तो जब वो पीछे हटती हैं दोबारा, तो उनकी जो सहयोगी होती हैं वो वहाँ पहुँच जाती है, वो उनसे कहती हैं कि क्या हो गया, आप इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे? अमूमन आप ठीक हैं या ऐसा कुछ, उनसे एक दो सवाल करती हैं, लेकिन जो फ्लाइट अटेंडेंट थी वो काफ़ी घबरा जाती हैं। मेरी वेदर इतनी घबरा जाती हैं कि वो उनसे कुछ कह नहीं पाती, वो उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती हैं बात करते वक्त। तो अब वो फेयर मेरी वेदर के दिमाग में एक साइड ये भी कि उन्होंने जो अभी अभी देखा क्या वो सच है, और ये भी कि अगर वो अपने कुलीग को बताएगी तो वो क्या सोचेंगी इस बारे में, यह सब ठीक है या नहीं है, काफ़ी जद्दोजहद में। लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी को एक्सप्लेन करना इतना भी आसान नहीं था। एक अवन, अवन में एक चेहरा, और चेहरा इतना साफ कि उससे कोई भी घबरा जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, यहीं पे मैं अंत करता हूँ एपिसोड नंबर 1 का, क्योंकि इसके बाद की जो कहानी है कि क्या कुछ होता है फे मेरी वेदर और उनकी सहयोगी के साथ और उस प्लेन के साथ जहाँ पर ये सवार थे, फ्लाइट 318, और क्या रहस्य है इसका फ्लाइट 401 से, और क्यों इसे कहते हैं द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401, यह हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखें। धन्यवाद।